धवला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 10 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिन्नये जिने नमिहुं वेयण महाहियारं विविह हि आरं परुवेमो आचार्य श्री वीरस्वामी वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना खंड और उसमें हम वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार देख रहे हैं। ये 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 पर हम आ गए। 62 देखो, पहले हमने उत्कृष्ट अनुभाग की बात देखी थी और उसमें हमने अल्पबोधत्व देखा था जिसमें 64 वो जो उत्कृष्ट 64 स्थानों का अल्पबोधत्व बताया था। प्रकृतियां अलग अलग 64 प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग उसकी अपेक्षा बात की थी। अब जघन्य की अपेक्षा बात करनी है। ये अनुभाग जो कहने में आता है, अनुभाग स्थान जो कहने में आता है, वो अनुभाग स्थान क्या है उसकी भी थोड़ी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये बात देखी थी कि अनुभाग स्थान किसको कहना, या सत्ता का हो या बंध का हो, जिसको हम अनुभाग स्थान कहते हैं वो किसको कहना। तो जो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गण है, अंतिम निषेक मत समझो, सभी निषेकों में सभी टाइप के जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक स्पर्धक होते हैं। हमें स्पर्धक की रचना अलग से समझनी है अनुभाग की। जैसे हम स्थिति बताने के लिए निषेक की रचना दिखाते हैं और जो मैक्सिमम स्थिति जो पड़ती है ऊपर का अंतिम निषेक, उतनी स्थिति बंदी ऐसा कहेंगे। ऐसे ही जो अनुभाग की अपेक्षा अलग रचना करना है उसमें जो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में एक एक परमाणु में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है उसी को स्थान कह दिया है। देखो, जब हम उत्कृष्ट गिनेंगे एक परमाणु में कितना है, जैसे हम आपको कहेंगे आपके पास 2000 रुपए है तो 2000 की वैल्यू कैसे होती है, 1, 2, 3, 4 से बढ़ते हुए 2000 तक होगी। तो उसमें भी उस परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो कैसे बताएंगे, उसमें सारे गर्भित है, उस अनुभाग में सारा अनुभाग गर्भित है जो हम जघन्य से वहां तक देखते हैं। क्योंकि एक परमाणु में तो एक ही परमाणु है, उसमें स्पर्धक वर्गणा कैसे होगी, क्योंकि उसमें तो अनंत अनंत परमाणु होते हैं। परंतु वो नीचे से लेकर जो अविभाग प्रतिच्छेद है हम उत्कृष्ट कहेंगे तो उसमें सारा ही अविभाग प्रतिच्छेद गर्भित है, ऐसा लेना। एक परमाणु में अनंत परमाणु नहीं है। देखो, यही बात अभी इसी पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 111 निकालिए, 111, ये 12वीं पुस्तक के 111 पेज पर। तो ये आगे चुलिका में आने वाला है विषय। तो कहते स्थान की जो प्ररूपणा है उसमें स्थान कितने हैं, तो वहां कहते असंख्यात लोक प्रमाण है। ये तो सूत्र बताया। तो यहाँ कहते स्थान किसे कहना, नीचे जो सूत्र के स्पष्टीकरण में, एक जीव में एक समय में जो कर्मानुभाग दिखता है उसे स्थान कहते हैं। और वो स्थान दो प्रकार का है, अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग सत्व स्थान, यानी सत्व की अपेक्षा और बंध की अपेक्षा। उनमें से जो बंध से उत्पन्न होता है वह बंध स्थान कहा जाता है और पूर्वबद्ध अनुभाग का घात किए जाने पर जो बंध अनुभाग के सदृश होकर पड़ता है वह भी बंध स्थान है। क्या कहने चाहते हैं, कि कुछ बंध बांधा, यानी अनुभाग का कुछ बंध हुआ और उसका घात हुआ, फिर दोबारा अधिक बांधते तो मान लेते कोई बीच वाला अनुत्कृष्ट बंध किया और उसके बाद उसने थोड़ा बढ़कर बंध किया तो वो बंधस्था नहीं कहलाएगा, परंतु बंधने के बाद जो बंधा था उससे कम अनुभाग बांधता रहता है तो वो अधिक बांधा हुआ उसमें हानि हो जाती है। तो जो कहते कि परंतु हानि होकर भी जिसकी वैल्यू बंध के जो उसने बंध स्थान अलग अलग बांधे थे, बंध स्थान बांधे थे ने, बंध किया था तो बंध तो हम अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का जो एक परमाणु उसका अनुभाग गिनते हैं। अभी उसका अनुभाग घटकर सत्ता में से वो अनुभाग घटकर कोई नीचे के वर्गणा के सदृश हो जाएगा, इतना तो हो सकता है। अब ये जो बंधी हुई वर्गणा के सदृश हो जाए तो उसको भी बंध स्थान ही कहेंगे, परंतु अनुभाग घटकर अभी हम देखें जो षट स्थान होते हैं उसमें क्या होता है, वो ऊचार ऊचार वगैरह जो हमने विस्तार से देखा था, तो अंत में जाके अनंत गुण वृद्धि होती है, यानी लास्ट वाला जो अंतिम जो कोठे का अंतिम जो स्थान था ऊ आठ था, वो आठ नेक्स्ट में चला जाता है। अब इसको जो कहते हैं ये ऊ अंतिम ऊ से, यानी उसका अंत ऊ में होता है और आठ से नया षट स्थान चालू हो जाता है। तो बंध का जितना बंध था वो बंध होकर, यानी वो लास्ट वाला ऊ इसको पर्यवसान कहते हैं, अंतिम ऊ और उसके बाद वाला जो अनंत गुण वृद्धि का स्थान, तो सत्व घटकर इनके बीच वाले हो जाते हैं। जो बंधा था वो घटकर कैसे होता है, जैसे ये अभी यहाँ केवल वर्गणा समझना, निषेक नहीं समझना, जैसे हम कहते ये एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है, ये अंतिम वर्गणा है मान लेते हैं, उसमें एक सिंगल परमाणु में अनुभाग था, वो अनुभाग कितना था यहाँ तो हम वर्गणाएं बताए, परंतु उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं तो कहते मान लेते जो कुछ वैल्यू है उसके, तो उसकी वैल्यू घटकर अभी ये जो वर्गणाएं हैं एक एक से बढ़ते हुए वर्गणाएं थी, इसका अनुभाग घटकर ये जो हम उसको अगर ऊ चार वैसे तो लास्ट में ऊ आठ होता है जो बंध था, तो उसके बंधे हुए का अनुभाग घटकर इन बिटवीन यहाँ से इसके सदृश हो जाता है, ऊ और आठ के बीच में हो जाता है, उसको कहेंगे वो हत समुत्पत्तिक स्थान सत्व स्थान। तो यही कहते हैं हाँ? और जो घात होकर ये ऊ के सदृश वगैरह हो जाएगा तो उसको बंध स्थान ही कहेंगे, उसको सत्व स्थान नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, बंध स्थान अलग अलग जीवों के अलग अलग होते हैं, जैसे सूक्ष्म निगोद भी बंद कर रहा है और अंतिम जो कुछ जहां तक उसका बंद हो रहा है अनुभाग का, वहां तक सारे बंध के स्थान कहलाएंगे। और बंधने के बाद घात तो किसमें होगा विशुद्ध के द्वारा, तो ये अशुभ प्रकृतियों में घात हो जाता है, अनुभाग घात किसमें होता है, अशुभ प्रकृतियों में होता है, हम अशुभ की बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या तो ये घात होकर जो इन बिटवीन हो जाते हैं जैसे बंध स्थान के सदृश नहीं है तो कैसे होते, तो अंतिम ऊ और आठ इनके बीच में हो जाते हैं, उसका विस्तार से स्वरूप हम जब कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तब आने वाला है, अभी तो हम इतना ही समझते हैं, कुछ बातें तो फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड, बाद में उसका विस्तार आएगा। तो अभी जो घात होकर इन बिटवीन अंतिम ऊ एने क्या है, अनंत भाग वृद्धि, और उसके बाद होने वाली अनंत गुण वृद्धि, आठ यानी अनंत गुण वृद्धि वो उसका सिंबल है, उसके बिटवीन बिटवीन अनुभाग हो जाता है, तो उसको कहेंगे ये घात होकर ये स्थान उत्पन्न हुआ है। मुनि का मिनिमम
तो उन्होंने प्रूव किया कि वहाँ पे वो जो ऊ चार अंगुल के संदर्भ में बात प्रमाण के
देखो वो ऊ पांच की वगैरह विस्तार से बाद में आएगी। जघन्य स्थान किसको कहेंगे, जघन्य स्थान का नाम क्या है, वो कहाँ का अनुभाग गिनेंगे हम जघन्य स्थान में, जघन्य अनुभाग स्थान का अर्थ मिनिमम अनुभाग बन रहा है, परंतु मिनिमम अनुभाग कौन से परमाणु में है, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में एक परमाणु में, उसको भी जघन्य स्थान कहेंगे ना, कि पहले पहली वर्गणा में उसको जघन्य स्थान नहीं कहेंगे, जगन्य अनुभाग की बात नहीं है, जगन्य स्थान की बात है। कोई भी स्थान क्यों ना हो, बंध से जो उत्पन्न स्थान होते हैं वो बंध स्थान, और जो सत्व घटकर जो स्थान होते हैं इसको हत समुत्पय या सत्व अनुभाग सत्व स्थान कहेंगे। यहां तक दो बातें समझ में आई। अब जो बंध होता है वो जगन्य भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। जब जगन्य मिनिमम पॉसिबल बंध बांधा तो उसको कहेंगे जगन्य स्थान। वो जगन्य स्थान, स्थान जब शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या है, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसका नाम है स्थान। अब ये अविभाग प्रतिच्छेद जो जगन्य बांधा जो हम कहेंगे, तो जगन्य में भी वो अनंत स्पर्धक होगे कि नहीं होगे, पहले से शुरू करके वो अंतिम स्थान है उसका।
तो वहाँ पे भी जो प्रतिस्पर्धक जो एक एक से बढ़ता हुआ और पीछे गेट होता है, पीछे वापस डबल हो जाता है, तो वो सभी स्थान नहीं गिने
जाएंगे? नहीं, वो सभी स्थान में, यानी वो सभी है उसके अंदर, वो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के सभी वहाँ अलग अलग टाइप के परमाणु एक एक निषेक में हो गए, यानी पूरी वो, पर उसको सबको मिलकर स्थान यह संज्ञा नहीं है। जैसे योग स्थान में हम देखते हैं सभी वर्गणाओं और उसके सभी टोटल अविभाग प्रतिच्छेदों को मिलकर स्थान कहते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट वाले एक परमाणु में जितना अनुभाग है बस उसी की स्थान संज्ञा है। ये एक बार क्लियर करो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। टोटल स्थान का अर्थ क्या है, किसी ने जगन्य बंध किया, किसी ने उससे बढ़कर किया, किसी ने उससे अन्य अन्य जीवों को या एक जीव को अन्य अन्य समयों में अलग 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 जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे हम ज्ञान के भेद देखते थे, पर्याय समास ज्ञान के भेद देखे ना, पहला जो भेद है, दूसरा भेद जो एक अविभाग प्रतिच्छेद वाला अधिक नहीं है, अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान है, ऐसे इसमें भी जो अलग अलग स्थान है इन टोटल स्थानों की संख्या कितनी है, तो असंख्यात लोक प्रमाण। कहाँ से कहाँ तक, वो सूक्ष्म निगो से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के जो जितने स्थान होंगे वो सब उसमें ले लेना। अभी जरा सुनो, थोड़े आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें विषय समझना है। देखो हर प्रकृति का अपना अलग अलग है, क्योंकि हमने उत्कृष्ट के अल्प बहुत 64 देखे, हर एक प्रकृति का उत्कृष्ट कितना होता है, कौन से उत्कृष्ट से कौन से कितना ज्यादा है वो हमने देख लिया। जघन्य में भी हम अल्प बहुत प्रकृति वाइज देखा, प्रकृति वाइज अल्प बहुत तो है ही है, जीव समास वाइज भी होगा। यहां तक समझ में आई बात? अब वो भी उत्कृष्ट में हम कहेंगे उत्कृष्ट अनुभाग का जो अल्पभूतो बांधने वालों का, और जगन्य अनुभाग को उसी प्रकृति को बांधने वाले का, वो उल्टा पुल्टा हो सकता है जीव समास के अनुसार। अभी हमें थोड़े आगे बढ़ेंगे, ये यहां क्या कहना चाहते हैं, पेज नंबर 112 निकालो। हमने ये बंध है कि जो बंध से तैयार होते हैं उसको बंध स्थान कहेंगे, अनुभाग स्थान की चर्चा चल रही है। अब यहाँ कहते हैं घाता जाने वाला जो अनुभाग स्थान, हाँ मैं आगे की थोड़ी स्थान किसको कहना वो बात समझा रही है। हाँ एक सौ 111 हमने शुरू किया था, अभी 112 पर आए हैं। स्थान किसको कहना उसकी बात चल रही है, यानी वो स्थान जो होते हैं अनुभाग के बंध स्थान भी होते हैं और सत्व स्थान भी होते हैं। ये 12वीं पुस्तक के 112 पेज पर अभी हम आ गए। तो सेकंड लाइन, घाता जाने वाला जो अनुभाग स्थान, घात कर जो तैयार हुआ है, बंध अनुभाग के सदृश नहीं होता, किंतु बंध सदृश अष्टांग और उर्वंक के मध्य में। जैसे पेज नंबर 112 आगे चलकर हम चूलिका की बात देख रहे हैं विषय को स्पष्ट करने के लिए। हाँ तो बंध सदृश अष्टांक, अष्टांक यानी अनंत गुणावृद्धि वाला स्थान, और उर्वंक यानी अंतिम उसके पहले वाला उर्वंक, इसके मध्य में अंतिम उर्वांक और उसके बाद 8 होता है, उसके बीच में ऊ 8 जहां हुआ ना, 9 कोठे और 9 पंक्तियां, हाँ वहां उसके समान जो होता है ये, इसकी क्लैरिटी जब हम वो ऊ 4 क्या होता है वो जब पढ़ेंगे तब होगी। अभी तो हमें केवल बंधस्थान सत्व स्थान को देखना है। अष्टांग अनंत गुणा वृद्धि, अंतिम अनंत गुणा, एक्चुअली जो अंतिम होती है वो नेक्स्ट स्थान में चली जाती है, क्योंकि किसी भी स्थान की शुरुआत अष्टांग से होती है, हाँ, और अंत उर्वांग से होता है। तो अधस्तन उर्वांग से अनंत गुणा और ऊपरी अष्टांग से अनंत गुणा हीन होकर स्थित रहता है, वह अनुभाग सत्कर्म स्थान है। बंधे हुए के वो ऊ और आठ के बीच में वाला है। अनुभाग बंध स्थान और सत्कर्म स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं।
असंख्यात लोक समान जो स्थान है वो अंतिम अष्टांग और उसके अधस्तन उर्वांग के बीच वाले हुए के उसमें सभी स्थान होते हैं।
देखो पहले में पहले असंख्यात लोक प्रमाण बंध स्थान है, ये समझ में आई, उससे असंख्यात गुणा ये इन बिटवीन बंध स्थान उसके बीच में तैयार हो गए अपने अपने नीचे उर्वांक और अष्टांग के बीच में।
हाँ
अधस्तन है नहीं, आठ के नीचे का उर्वांक। आप ये बात पढ़ेंगे ना तो सब क्लियर है। ये हमारा विषय आने वाला है, क्योंकि आपके इतने प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूजन बहुत कर रहे हैं, क्योंकि नए नए प्रश्न आप जो चल रहा है विषय उसको पहले समझो बराबर। ये हम जब कंटिन्यूएशन में इस विषय पर आएंगे तो सारे प्रश्नों का समाधान होने वाला है। पहले तो हमें टर्मिनोलॉजी तो समझ में आने दो। तो कहते अनुभाग बंध स्थान चौथी लाइन और सत्कर्म स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं। यहाँ अनुभाग बंध स्थान और सत्कर्म स्थान ऐसा कहने पर अभी ये महत्व की बात है, एक जीव में अवस्थित कर्म परमाणुओं में जो उत्कृष्ट अनुभाग सहित कर्म परमाणु है, एक कर्म परमाणु का जो अनुभाग है वही स्थान होता है, क्योंकि भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभागों की विवक्षित परमाणुओं में स्थित अनुभाग के साथ प्रवृत्ति न होने से बुद्धि से एकता को प्राप्त हुए उनकी एक स्थानता का विरोध है। इसलिए प्रश्न पूछा था कि एक परमाणु में स्थान होता है तो उनमें अनंत वर्गना और स्पर्धकों का अभाव होता होगा। तो कहते उन सभी अनुभाग वो एक उत्कृष्ट में अंदर छिपे हुए हैं। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो हमें कोई लाख कहना है तो लाख कहना है तो उसमें एक से लेकर सारे उसमें काउंटिंग हो जाती है, इस तरह से उसका अर्थ समझना। इसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा, पर्यायार्थिक यानी प्रत्येक परमाणु का फिर एक एक वर्गणा का टोटल, फिर अनेक वर्गणाओं का समूह, स्पर्धक का टोटल विभाग जो हम योग स्थान में देखते थे वो पर्यायार्थिक नहीं अलग था, और इसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा क्यों ली है ये आगे उसकी चर्चा मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर टोटल, क्योंकि एक परमाणु में इतना विभाग है तो इतने अनंत परमाणु में कितना है, अगर उसको अगर हम स्थान कहेंगे समझो तो अभी क्या होगा, कहीं बहुत सारी निर्जरा हो गई, तो निर्जरा हो गई तो क्या अनुभाग स्थान चेंज हो गया, क्योंकि देखो देखो यदि कहेंगे सब में हम समान लेते समझने के लिए, एक परमाणु में 100 है और ऐसे 1000 परमाणु है तो लाख हुआ टोटल, अगर अगर उसको अगर हम स्थान संज्ञा देंगे तो वो स्थान की वैल्यू होगी 1,00,000। अभी उसमें से एक एक का अनुभाग कितना देखा था हमने, 100 और ऐसे 1000 परमाणु देखे। अभी यह 1000 में से मान लेते कि 200 परमाणु निकल गए फिर गए तो अभी अनुभाग स्थान क्या होगा, हाँ तो क्या ऐसा होता है, क्योंकि अनुभाग जो उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है तो सत्ता में पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक निषेक में वो अनुभाग पड़ा है। परमाणु खिर जाने से अनुभाग स्थान घटता नहीं है, इसलिए ये द्रव्यार्थिक नहीं लगाया है। योग स्थान की बात अलग थी, वहां तो जीव के असंख्यात प्रदेश तो कांस्टेंट है, नहीं नहीं कांडक से भी घटेगा, अनुसमय अपवर्तन से भी घटता है, और बिना कांडक के यानी वो तो बंधने के बाद वो घटने की क्रिया तो चालू ही रहती है। ऐसा नहीं है ना, तभी तो हाँ, क्योंकि मान लेते कुछ बहुत सारे खिर गए तो बहुत सारे खिर गए तो अनुभाग क्या, ऊपर के सभी निषेकों में उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है उसका क्या होगा, ख्याल में आई ना, इसीलिए द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेकर अनुभाग स्थान कहते हैं, यानी परमाणु की संख्या से वो कोई कंसर्न नहीं है, बस यही उसकी अपेक्षा है।
अच्छा इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा
बंध स्थान की बात कर रहे हैं आप?
वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा था कि जो पहले से सातवें गुण स्थान में जा रहा है उसके जगन अनुभाग बंध स्थान नहीं देखा और आपने सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त में क्यों लिया,
उसमें भी नहीं लिया उसका? तो देखो देखो, आपका जो प्रश्न है आप बीच बीच में पढ़ते हो ना तो ये कंफ्यूजन और बढ़ता है। है ना, समझे बिना उसके प्रश्न करने से उनका रीतर्तिपाय यहाँ जो विषय चल रहा है ना हमारा, वो समझना अपनी जवाबदारी है। आपका जवाब तो जरूर मिलेगा क्योंकि वहाँ तो जिसके बंध स्थान अलग है, जगन्य बंध स्थान अलग है और वहाँ तो संयमियों से तो एक इंद्रिय में ज्यादा बताया। मिथ्या तो की मैं बात कही हूँ, मैंने पढ़ा है सब सुबह। आप प्रश्न भी पूछते हैं और फिर गड़बड़ी भी करते। देखो 338 पेज निकाल। उनका प्रश्न है कि संयम में मिथ्यात्व का जघन्य बंध, जघन्य अनुभाग बंध कौन करेगा? मिथ्यात्व में से संयम के अभिमुख वाला करेगा कि नहीं करेगा?
नहीं करेगा, इससे भी समझ रहा था, इसीलिए मैंने पूछ लिया।
वो करेगा, उसका जघन्य होगा, वो उत्कृष्ट करेगा कि सूक्ष्म नहीं
होगा?
अभी अनुभाग बंध की बात चल रही है। आप स्थान की बात अलग बात है, बंध स्थान अलग है, सत्व स्थान अलग है। निकालो 338 पेज। जय धौला है, पांचवी पुस्तक है। देख, ये अनुभाग बंध अलग बात है और अनुभाग का सत्व अलग बात है। और वो सत्व कैसे होता है, वो जो कुछ सत्ता में पड़ा हुआ अलग बात है और वहां पर बंध होने वाला वो अलग बात है। तो जो मिथ्यात्व का बंध कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि करेगा कि ऊपर के गुणस्थान वाले? मिथ्या दृष्टि करेगा। तो मिथ्यात्व का जघन्य में जघन्य अनुभाग बंध किसके होगा? तो कहते कि सर्व विशुद्ध अंतिम समयमर्ती मिथ्या दृष्टि जो संयम के सन्मुख है उसके होगा। उससे सर्व विशुद्धि असंगी को अनंत गुणा है, उससे चतुरिंद्री को अनंत गुणा है, उससे तीनद्री को अनंत गुणा है, द्विंद्री को अनंत गुणा है, एकेंद्री को अनंत गुणा है, सबसे अनंत गुणा सूक्ष्म एकेंद्रीय को है। जघन्य अनुभाग बंध में कंपैरिजन चल रही है, उत्कृष्ट की बात नहीं हो रही। जघन्य अनुभाग बंध इनका अनंत गुणा अनंत गुणा है। अब उससे अभी उसमें हमने नंबरिंग भी किया था, 7 नंबर तक तो अनंत गुणा हुआ। अभी जो अनुभाग सत्कर्म है, अभी ये जो अनुभाग बंध है उससे अनंत गुणा, उसका अनुभाग सत्कर्म है। किसका? वो सूक्ष्म एकेंद्रीय का। अभी जो हमने वो संयमी से लेकर एकेंद्रीय तक बात की थी, अभी एकेंद्रीय से लेकर संयमी तक बढ़ाओ, सत्कर्म की बात है, वो अनंत गुणा होगा।
तो वहाँ पे सत्ता
अलग बात है, वही तो कहते हैं। क्योंकि आप ये प्रश्न उठा रहे हैं ना बीच में, तो उसमें क्या है कि जो विषय वो समझ में नहीं आ रहा है और कन्फ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है। क्रम से हम चलेंगे तो कोई कन्फ्यूजन आने वाला नहीं है। थोड़ी शांति, थोड़ी धीर ये रखना चाहिए, धीरज थोड़ा रखो। मैं तो कहती जो प्रश्न आपके कन्फ्यूजन हो रहे हैं ना, वो प्रश्न लिख के उसको भूल जाओ और विषय समझो, है ना? क्योंकि क्या है, बाय द टाइम वो समझते समझते जो लोगों को भी समझ में आता है तो फिर आप नया प्रश्न खड़ा करते हो। तो प्रश्नों में क्या हो रहा है, मूल विषय बाजू रह रहे हैं और आपका भी और कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। अभी हम अपने मूल विषय पर आते हैं। अभी अपने को क्या क्या समझना है, कुछ बंध से स्थान होते हैं और कुछ अनुभाग का ये घटकर जो स्थान हो जाते हैं, ये दो प्रकार के। अभी अपने मूल पुष्पराणा जहां हम जघन्य अनुभाग की अपेक्षा बात देख रहे थे, 62 पेज पर अब जब जघन्य अनुभाग कह रहे, वो सत्ता में जो कोई जघन्य बंद से हो या कैसे हो वो बताएंगे, जिसको किसकी अपेक्षा है। तो यहाँ सब पहले तो हमने तीन गाथाएं देखी थी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की कंपैरिजन हुई थी। अब यहाँ जो 64 का अल्पभो तो फिर बताएंगे, वो जघन्य से जघन्य की बात है। जघन्य से शुरुआत करेंगे तो कितना अधिक है वो बताएंगे, क्योंकि उत्कृष्ट से शुरुआत की तो अनुत्कृष्ट को हम हीन हीन देख रहे थे। अब हमने जघन्य से सबसे जघन्य शुरुआत करेंगे तो फिर वो कितना गुना होता है वो उसका अजघन्य जो है ये उसका जघन्य, अजघन्य भी नहीं, एक प्रकृति के जघन्य से दूसरे प्रकृति का जघन्य कितना अधिक है वो बताएंगे। तो अभी हम ये सूत्र कल हमने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ते ये गाथा देखो, ऊपर जो 4 नंबर की गाथा है ना, गाथा सूत्र कहते हैं उसको। संजमन दान मोही लाभम सुद चक्षु भोग चक्षुं च आभिनिबोह्य परिभोग विरियण वणोक सायाया। ये क्या करेक्शन नए पुस्तक में? हाँ करेक्शन, हाँ संज्वलन चतुष्क इसका सबसे कम होगा, वो बताएंगे अभी एक एक बाद में सूत्रों को लेकर भी इसकी विशेषता बताएंगे। मन परे ज्ञानावरण दानांतराय अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण लाभांतराय, ये सब बंध की अपेक्षा बात कर रहे हैं। जहां विशुद्धि अधिक वहां बंध कम होगा। श्रुत ज्ञानावरण अचक्षु दर्शनावरण भोगांतराय चक्षु दर्शनावरण आभिनिबोधिक ज्ञानावरण परिभोगांतराय वीर्यांतराय और नव नौकषाय, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी है। जब उसकी चर्चा करेंगे चूर्णी सूत्र ने छुटकर सूत्रों में, तब उसका कारण मीमांसा भी कहेंगे। अभी एक एक शब्द जो गाथा में शब्द आए हैं उसका अर्थ कहते। संज कहने से संज्वलन, संज ऐसा कहने पर चारों ही संज्वलन कषायों का ग्रहण करना चाहिए। मन दानम यह कहने पर मन परे ज्ञानावरणीय और दानांतराय का ग्रहण करना चाहिए। वो ही ऐसा कहने पर अवधि ज्ञानावरण का ग्रहण करना चाहिए और अवधि ज्ञानावरण के साथ दर्शन अवधि दर्शनावरण भी लेते ही हमेशा। लाभ पद का निर्देश लाभांतराय का ग्रहण करने के लिए किया है। श्रुत ज्ञानावरणीय का ज्ञान कराने के लिए सुद पद का निर्देश किया, निर्देश है नहीं कथन। अचक्षु दर्शनावरणीय का ग्रहण करने के निमित्त अचक्षु पद का निर्देश किया है और भोग पद का निर्देश भोगांतराय का प्ररूपक है। चक्षुंच यह निर्देश चक्षु दर्शनावरणीय का ग्रहण करने के निमित्त है। फिर शंका पूछते हैं चक्षुं च, यहाँ च शब्द का उच्चारण किस लिए किया है? उसका समाधान, जिस प्रकार श्रुत ज्ञानावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय ये तीन प्रकृतियां अनुभाग की अपेक्षा परस्पर समान है, उस प्रकार चक्षु दर्शनावरणीय समान नहीं है। वो हमने देखी थी, वो अकेली अलग से देखी थी हमने। यह जतलाने के लिए च शब्द का निर्देश किया है। ये उत्कृष्ट का हमने देखा था तभी, उसकी में उसका तीन तीन के ग्रुप किए थे हमने, देखे थे। आभिनिबोह्य पद के निर्देश से आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय का ग्रहण करना चाहिए, 63 पेज। परिभोग इस वचन से परिभोगांतराय का ग्रहण करना चाहिए। नवच यहाँ किए गए च शब्द के निर्देश से इन प्रकृतियों से अव्यवहित प्रकृतियों का अनुभाग सदृश है, यह सूचना की गई। अव्यवहित यानी अनंतर प्रकृति। यानी बीच में कोई खंड नहीं, वो सब लगातार की वाली थी। वीर्य कहने पर वीर्यांतराय का ग्रहण किया गया है। ये अभी तो शब्दों के अर्थ बताए हैं, फिर सूत्रों में उसको और समझाएंगे। नव नौकषाया ऐसा कहने पर नव नौकषायों का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सर्वत्र अनंत गुण शब्द का अध्याहार करना चाहिए, अध्ययन टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसकी कंटिन्यूएशन समझना। हाँ हाँ, संयोलन चतुष्क सब साथ में, उसमें अलग अलग होगा क्योंकि जघन्य बंध की बात है। जघन्य में जघन्य बंध किसका होगा, क्योंकि जो बंध की उच्चति बाद में होती है, है ना, उसका तो, हाँ वो तो बाद में बताएंगे। लोमा क्रोमा वो तो हमने तो अधिक अधिक की बात है, परंतु यहाँ हमने देखे थे वो ऊपर जो अनुभाग कांडक घात होते हैं, अपूर्व स्पर्धक होते हैं, क्रम बदल जाता है, हमने देखा था। लोभ का सबसे सूक्ष्म हो जाता है, सबसे कम जघन्य बंध, और वो भी क्रोध की बंध विच्छित्ति पहले होती है, बाद में स्थिति की अपेक्षा भी देखो ना, 2 महीना 1 महीना 15 दिन और अंतर्मूर्त, ऐसे जो स्थितियों की बात है, अनुभाग भी और कितना कितना आगे घटता चला जाएगा। अब ये बताएंगे अपना, जब पहले 3 गाथाएं देखते हैं उनका अर्थ, फिर सूत्रों में उसकी चर्चा। 63 नंबर के पृष्ठ पर 5 नंबर की जो गाथा सूत्र है उसको हम कहेंगे के पणि अठत्यण मिच्छा ओवे तिरिख मणुसाउ ते आकम शरीरम तिरिख निरय मणुवदेव गई। केवल ज्ञानावरण वो केवल दर्शनावरण के कहने से दोनों आ गए, उन्हीं कहने से निद्रा आ गई। देखो प्रचला निद्रा 8 कषाय, स्त्यांग वृद्धि आदि 3, अनंतानुबंधी चतुष्क, अण कहने से अनंतानुबंधी चतुष्क, क्या क्या स्त्यांग वृद्धि आदि 3, यानी स्त्यांग वृद्धि को बाद में लिखना इसलिए होगा। ऊपर देखो क्या लिखा है, नीदि उत्ते नुवा अठैदि उत्ते नहीं, उसमें क्या कहा निद्रा आदि 3 के निद्रा निद्रा, यानी उसमें वो निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और उसकी अपेक्षा, परंतु मूल इसमें तो स्त्यांग वृद्धि आदि 3। हाँ हाँ स्त्यांग वृद्धि, क्योंकि हमेशा उसकी उसका ऑर्डर बाद में बताएंगे, पर हमेशा हम स्त्यांग वृद्धि आदि 3 कहने की पद्धति आपको याद होगा तो। अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व औदारिक शरीर वैकिरिक शरीर तिर्यगायु मनुष्यायु, तिरिक मनुष्यायु लिखा ना, तेजस शरीर कारमान शरीर, तिर्यक गति नरक गति मनुष्य गति और देव गति, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी है, यानी जो हमने जघन यही अनुभाग बंध की बात है, और वो भी जघन्य अनुभाग बंध की बात है। पहले हमने जो अल्पभूतव देखा था उत्कृष्ट अनुभाग की बात थी, उत्कृष्ट अनुभाग बंध की बात थी, यहाँ इन प्रकृतियों का जघन्य बंध, उसका स्वामी कौन है वो सब बातें अलग है, परंतु उसमें अल्पभूतव बता रहे हैं। देखो केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय का ग्रहण करने के लिए के ऐसा निर्देश किया है, वे दोनों ही प्रकृतियां सदृश है, यह जतलाने के लिए के इस एक ही शब्द के द्वारा उन दोनों का निर्देश किया गया है। प ऐसा कहने पर प्रचला का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नाम के एक देश से भी नाम वाले का बोध होता हुआ देखा जाता है, उसका हमने देखा था उदाहरण। नीस निर्देश से निद्रा का ग्रहण करना चाहिए, कारण पहले के समान कहना चाहिए। अठ ऐसा कहने पर प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन 8 कषायों का ग्रहण करना चाहिए। तीय कहने पर स्त्यान वृद्धि त्रय का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आचार्यों का उपदेश है। ऊपर क्या लिखा है प्राकृत में आपके इसमें 3री लाइन में, तियत्ति बनी दे, क्या लिखा है तीन गिद्धि तियम गेतव्यम, तो ये करेक्शन किया आपने बराबर है। और यह निर्देश अनंतानुबंधी चतुष्क का ग्रहण करने के निमित्त है। मिथ्या शब्द का निर्देश मिथ्यात्व का ग्राहक है, ओ कहने पर औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। शंका पूछते, ओ कहने पर अवधि ज्ञानावरण का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता? समाधान, क्योंकि उसका पहले कथन कर आए हैं। कहाँ कर रहे? पहली गाथा में। हाँ, वे ऐसा कहने पर वैकृत शरीर का ग्रहण करना चाहिए, अन्य का नहीं, क्योंकि उससे अन्य का ग्रहण करना संभव ही नहीं है। तिरिक्ख मनुषा वो ऐसा कहने पर तिर्यक आयु और मनुष्यायु, इन दो आयुओं का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आयु शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है। तेया कम्म शरीरम ऐसा कहने पर तेजस और कार्मन शरीर का ग्रहण करना चाहिए। तिरिक्ख निरय मनुव देव गई ऐसा कहने पर चारों गतियों का ग्रहण करना चाहिए। ये गई शब्द जो है गति, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तेरियंच नार के मनुष्य देव, क्योंकि गति शब्द का संबंध प्रत्येक के साथ है। देखो, उत्कृष्ट अनुभाग देखा था तो देवगति में सर्वोत्कृष्ट था, फिर मनुष्य में था, फिर नारकी में था, और फिर तीर्यंच में था। अब इन सबका जघन्य अनुभाग, हाँ, तो तीर्यंचों में जितना होगा उससे वो तो अनंत गुना है। अब ये 6 नंबर का गाथा सूत्र ऊपर पढ़ेंगे, बाद में वो एक एक सूत्र करके वो एक्सप्लेन करेंगे। नीचा गोदम अजसो असादमुच्छम जसो तह सादम निरयाऊ देवाऊ आहार शरीर नामम च। नीच गोत्र अयशस कीर्ति असाता वेदनीय, उच्च गोत्र यश कीर्ति तथा साता वेदनीय, नारकायु देवायु और आहार शरीर, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी है। यह गाथा सुगम है। यहाँ तो केवल उसके नाम बताए, कौन किससे अनंत गुणा है वो बताया है। अभी पहले जैसे कहें मंद बुद्धियों के लिए, तो हमारे लिए अभी एक एक सूत्र में उसका वर्णन करेंगे। कहते एत्तो, एत्तो ने यहाँ जहन्नो 64 पदियो महादंडो कायवो भवदी, आगे 64 पद वाला जघन्य महादंडक करने योग्य है। इसी से बात हुई कि ये जघन्य का अल्प बहुत बता रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ लिखा नहीं था ना, कहां पर 4 नंबर की गाथा के वहां केवल उत्तरोत्तर अनंत गुणी कहा, पर वो जघन्य अनुभाग अपेक्षा वो बात थी और बात वह यहाँ बता दी। जघन्य महादंडक का अर्थ होता है जघन्य अनुभाग बंधन में अल्प बहुत, और उत्कृष्ट महादंडक जो वो भी 64 पद वाला था, उसमें उत्कृष्ट अनुभागों का हमने उत्कृष्ट से शुरुआत करके कितना हीन है वो बताया था। पूर्वोक्त जघन्य अल्पभूतों से सूचित 64 पद वाले अल्पभूतों को कहते हैं। अब 119 नंबर का सूत्र, सव मंदानुभागम लोभ संजलनम। अब इसमें नंबरिंग करना है। संज्वलन लोभ सबसे मंद अनुभाग से युक्त है। अभी उसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी बंध का यहाँ ग्रहण किया गया है। उसका बंध वहां होता है और वहां विशुद्धि जाने जो, हाँ, लोभ का वहां बंध अंतिम बंध 9वें के अंतिम समय में है। शंका, सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म कृष्टि स्वरूप लोभ का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जब पहले हमने देखा था जघन्य सत्व की अपेक्षा बात देखी थी, बंदर सत्व जहां जो जघन्य होगा, तो हमने सूक्ष्म सांप्राय वालिक को लिया था वहां पर, और यहाँ कहते कि 9वें के अंत में। समाधान, नहीं, क्योंकि बंध के अधिकार में, अब यहाँ बंध का अधिकार बताइए, 64 पद जो है बंध की अपेक्षा लगाने हैं, तो बंध के अधिकार में सत्व का ग्रहण करना नहीं बन सकता। वेदना में केवल सत्व का ही कथन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह बंध और सत्व दोनों का ही प्ररूपक है। ये वेदना भाव जो बात चल रही है, अनुभाग की चर्चा चल रही है अपनी स्थिति की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो कहते यहाँ मात्र सत्व का कथन नहीं है, बंध की भी बात है और सत्व की भी बात है, तो यहाँ तो बंध की ही अपेक्षा लगा रहे हैं। ये 64 पद वाले जघन्य व उत्कृष्ट अल्प बहुत्व बंध का आश्रय करके ही अवस्थित है, ये उन्होंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया। शंकाकार पूछते यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यह महाबंध सूत्र के उपदेश से जाना जाता है। महाबंध में भी वो तो कल हमने निकाल के देखी थी ना, वो अनुभाग अनुभाग संबंधी भी उसमें दो पुस्तकें हैं, कौन से है, चौथी और पांचवी, महाबंध की चौथी पांचवी है, और ये जयधवला में अभी हमने देखी तो वो पांचवी है। अभी आगे 120 नंबर का सूत्र, माया संज्वलन अनंत गुणम, उससे माया संज्वलन अनंत गुणा है, क्योंकि वो जिसको माया वेदक काल के अंतिम समय तक बनता है वो, तो उसके बाद यानी कितनी जो विशुद्धि बढ़कर फिर लोभ बंधा, तो वो सबसे कम था और ये अनंत गुणा था, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय से नीचे यानी उसके पूर्व में अंतर्मूर्त उतर कर, आप कहेंगे शपक कहाँ उतरता है, उतर कर ने पूर्व की अपेक्षा बात करना है, स्थित माया कषाय के अनुभाग बंध का यहाँ ग्रहण किया जाता है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी अनुभाग बंध की अपेक्षा उसका द्विचरम, द्विचरम करो वो द्वि हो गया, द्विचरम समय संबंधी अनुभाग अनंत गुणा है। हमने क्या देखा था, अनुभाग बंध अनंत गुणा घटता चला जाता है प्रति समय, प्रति समय की बात है यहाँ पर, जैसे स्थितियों में अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के बाद में कटौती होती थी, परंतु अनुभाग में तो प्रति समय की कटौती होती है, यानी सत्ता वाला अनुभाग भी प्रति समय घटता है, उसको अनुसमयापवर्तन कहा था, और अनुभाग बंध प्रति समय अनंत गुणाहीन हो जाता है, उससे त्रिचरम समय संबंधी अनुभाग अनंत गुणा है, तो एक एक समय में अनंत गुणा का डिफरेंस है, तो ये अंतर्मूर्त नीचे की पहले की बात हो रही है। इस प्रकार सर्वत्र अनिवृत्तिकरण काल के भीतर अनुभाग की वृद्धि देखे जाने से उक्त कथन का परिज्ञान होता है कि लोभ से माया का जो बंध है, जघन्य बंध, वो अनंत गुणा है। मान संज्वलन अनंत गुणम, उससे मान संज्वलन अनंत गुणा है, यही रीजनिंग है। अब ये तो आसान है समझना, क्योंकि माया संज्वलन के जघन्य बंध संबंधी स्थान से पीछे, पीछे ने पूर्व में अंतर्मूर जाकर स्थित मान संज्वलन के जघन्य बंध का यहाँ ग्रहण किया है, जो उसका अंतिम समय है बंधने का, वहां पर लेना उसको। यहाँ भी अनंत गुणे का कारण प्रति समय अनंत गुणी श्रेणी रूप से पीछे अनुभाग बंध की वृद्धि है, यानी हम उल्टे क्रम से देखेंगे तो उसके पहले अनंत गुणा था, उससे पहले अनंत गुणा था, उससे पहले अनंत गुणा था, उसको श्रेणी कहते। कहते क्रोध संज्वलन अनंत गुणम, उससे क्रोध संज्वलन अनंत गुणा है, क्योंकि उससे पीछे अंतर्मूर जाकर स्थित जघन्य बंध का यहाँ ग्रहण किया गया। अब 123 नंबर का सूत्र, मणपज्जय नानावरणीयम दानंतरायम च दोवी तुल्लानी अनंत गुणानी, उससे मनपर्य ज्ञानावरणीय और दानांतराय, ये दोनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणी है। हाँ, ये पांच और छह डालो, वैसे हमें सूत्र में हमने पांच नंबर डाला था, पर प्रकृतियों के नंबर करेंगे तो 64 आएंगे, तो पांच और छह नंबर डालना, क्योंकि संज्वलन क्रोध का जघन्य अनुभाग बंध बादर कृष्टि स्वरूप है। क्या कहना चाहते हैं, शपक श्रेणी में जो हुआ था, पहले तो अपूर्व स्पर्धक थे, पूर्व स्पर्धक का, फिर अपूर्व स्पर्धक हुए, बादर कृष्टि हुए, फिर बादर की सूक्ष्म कृष्टि करने में आ रही, सूक्ष्म कृष्टि का बंध नहीं होता है, ये जो अंतिम बंध जो है क्रोधमान मायलोभ के, वो बादर कृष्टि रूप से हो रहे थे, तो कहते हैं संज्वलन क्रोध का जघन्य अनुभाग बंध बादर पृष्टि स्वरूप है, परंतु इन दोनों प्रकृतियों का अनुभाग स्पर्धक स्वरूप है। समझ में आता है कृष्टि और स्पर्धक में क्या अंतर है? स्पर्धकों से भी देखो, जो स्पर्धक रूप थे, स्पर्धक किसको कहे? जो संसार अवस्था में जो कोई उसका जो उत्कृष्ट को जो होगा उसकी वैल्यू होगी, परंतु उसका कहाँ से शुरुआत होती? जघन्य स्पर्धक सबसे एक लेवल पर है। अब उससे भी अनंत गुना ही नहीं से नीचे अपूर्व स्पर्धक होते हैं। शपक सैनिक के उसमें थे ना, शिविर में हमने देखा ना, एक ऐसा कांडक घात होता है और फिर वो अपूर्व स्पर्धक भी होते हैं। यानी क्या होता है कि संसार अवस्था में ऐसे स्पर्धक कभी नहीं थे, जो मिनिमम जघन्य स्पर्धक है उससे भी नीचे घटकर अनंत गुणाहीन होते होते अनेक स्पर्धक नीचे तैयार होते हैं। जैसे हम निगेटिव कहेंगे ना, निगेटिव में जैसे जीरो टेम्परेचर है और माइनस में चले जाते हैं, तो ज्यादा जितने हम कहेंगे -32 डिग्री तो कितना ज्यादा होगा, और -5 डिग्री से कम होगा। तो इससे माइनस में वो चलते रहते, अपूर्व स्पर्धक बने, और माइनस में चले गए तो कहेंगे बादर पृष्टि बनी। तो बादर पृष्टि रूप से बंध भी है वहां पर, क्योंकि बादर पृष्टि रूप से उदय भी होता है अंत अंत में, तो बादर पृष्टि रूप से बंध भी चलता है। और पहले कैसा बंध होता था? स्पर्धक रूप से होता था। यही कह रहे, देखो फिर मैं पढ़ती हूँ इसको, क्योंकि संज्वलन क्रोध का जघन्य अनुभाग बंध बादर पृष्टि स्वरूप है। क्योंकि हमने देखा ना, क्रोध की क्षपणा होती है, पहले वो अश्वकर्ण हुआ, फिर कृष्टिकर्ण हुआ, वो सब उसमें आते हैं ना, वो अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं। परंतु इन दोनों प्रकृतियों का अनुभाग कौन से? मन पर ज्ञानावरण और दानांतरण स्पर्धक स्वरूप है, क्योंकि इनका सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंतिम समय में जो बंध होता है वह स्पर्धक रूप होता है, वह कृष्टि स्वरूप नहीं हो सकता। ये कृष्टि किसमें होती है? मात्र संज्वलन चार में वो कृष्टियां होती है, अन्य में किसी में नहीं होती, और वो भी क्षपक श्रेणी में होती, क्रोध मान माया लोभ सभी में। उपशम श्रेणी में तो मात्र वो बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ होता है, उसमें अपूर्व स्पर्धक भी नहीं होते हैं, और वो उसमें तो कृष्टि रूप हो जाते हैं, परंतु वो तो सूक्ष्म कृष्टि होकर उसके उपशम हो जाता है। यहां तो कहते हैं वो स्पर्धक रूप होता है। इसलिए संज्वलन क्रोध के जघन्य बंध की अपेक्षा विवक्षित इन दो प्रकृतियों का जघन्य बंध अनंत गुना है। क्योंकि प्रश्न ये उठना स्वाभाविक है कि क्रोध संज्वलन का तो कितने 90 में जो क्रोध का जो वेदक काल समाप्त हुआ था वहां उसका बंध है, और मन परे ज्ञानावरण दानांतराय का बंध कहाँ है? 10वें के अंत में बंध है, तो उसका और घटना घटकर होना चाहिए था, परंतु उसका रीजनिंग अभी हमने देख लिया। 124 ओहि नानावरणीय ओहि दंशनावरणीयम लाभंतरायम च, वो ला के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, तिन्नी भी तुल्लाणी अनंत गुणाणी, अवधि ज्ञानावरणीय अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय, ये तीनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर उनसे अनंत गुणी है। आप कहेंगे ये भी वहीं पर बंध रही है, परिणाम तो एक ही है। तो कहते इसका कारण प्रकृति विशेष है। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्षपक श्रेणी के भीतर देशघाती बंधकरण विधान में जो यह बतलाया गया है कि जिन प्रकृतियों का अनुभाग बंध पूर्व में देशघाती हो जाता है उनका अनुभाग स्तोक होता है, तथा जिनका अनुभाग बंध पीछे देशघाती होता है उनका अनुभाग बहुत होता है, उसी से वह जाना जाता है। ये हमने उत्कृष्ट के जो प्रकरण में इसकी चर्चा की थी, और लब्धिसार के आधार से भी उसको देशघाती करण में वो कैसा उसका नंबरिंग है वो भी हमने देख लिया था, है ना। इसलिए वो चार संज्वलन के बाद पहले मन परे ज्ञान दानांतराय लिया, फिर अवधि ज्ञान और दर्शनार वगैरह लिया। अब 125 सूत्र, सुदनानावरणीयम अचक्षु दंशनावरणीयम भोगंतरायम च तिन्नी भी तुल्लानी अनंत गुणानी। शुद्ध ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय, ये तीनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर उनसे अनंत गुणी है। ये नंबरिंग करके आए क्या? 10, 11, 12, शिक्षा द्वारा। ब्रह्मा समझ में आएगा, नंबरिंग बराबर है। तो तिल्लोकर अनंत गुणी है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, चूंकि इन प्रकृतियों का अनुभाग बंध पीछे देशघातित्व को प्राप्त होता है, अतः इसी से उसका निश्चय हो जाता है। अब 126 सूत्र, चक्षु दंशनावरणीयम अनंत गुणम, उनसे चक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणी है, इसका कारण सुगम है। आविनिभूय नानावरणीयम परिभोगंतरायम च दोवी तुल्लानी अनंत गुणानी, उससे आविनिबोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय ये दोनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। वीर्यंतरायम अनंत गुणम, उनसे वीर्यांतराय अनंत गुणा है, यह सूत्र भी सुगम है। जब हमने उत्कृष्ट अल्पभूत देखा था तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन और असता वेदनी और ये वीर्यांतराय चारों को एक साथ रखा था, और फिर उसके ये अभिनिबोधिक वगैरह उसके उल्टे क्रम से हम चले थे वहां पर। पुरुष वेदो अनंत गुण, उससे पुरुष वेद अनंत गुणा है। वीर्यांतराय का अनुभाग देशघाती एक स्थानीय है तथा पुरुष वेद का भी अनुभाग इसी प्रकार का है, किंतु वह चूंकि अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा गया है, अतः वह ने यह कहा वीर्यांतराय अनंत गुणाहीन है। क्या कहना चाहते हैं? अनंत गुणाहीन बताए ना, पुरुष वेद तो अनंत गुणा है और वीर्यांतर अनंत गुणाहीन है। देखो क्या कहना चाहते हैं,
हीन हमने निकाला था लास्ट से।
क्या
हीन हमने निकाल दिया था, ये पुरुष वेद की बात चल रही है, वो पीछे 8-9 में उसका बंध है ना, वो अपेक्षा बात कर रहे हैं।
देखो पुरुष वेद अनंत गुणा है ना, तो वीर्यांतराय अनंत गुणाहीन है ना।
अच्छा, तो ये हीन काटना नहीं है,
वह अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा है, वह इन्हें कौन
तो
पहले पुरुष वेद के बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? 9 के पहले भाग में। और वीर्यांतराय कहाँ बंधा? 10 के अंत में। देखो यहाँ क्या कहते हैं, वीर्यांतराय का अनुभाग देशघाती एक स्थानीय है तथा पुरुष वेद का भी अनुभाग इसी प्रकार का है। देशघाती एक स्थानीय अनुभाग बंद होता है, ये कहाँ की बात है? अंतर के पहले की के बात की?
अंतर के पहले की।
अंतर के बाद ये एक साथ ये सात करण प्रारंभ हुए थे, वहां एक स्थानीय बंध शुरू हुआ था, याद है? अंतर करने के बाद की बात है। वहां भी देखो एक पहली स्थिति जो बनी एक वेद की और एक कषाय की बनी, अंतर करने के बाद जो एक स्थानीय बंध वगैरह मोहनीय का होता है वगैरह वगैरह सब बातें हुई थी ना वहां पर। तो देखो क्या कहते हैं, वीर्यांतराय का अनुभाग भी देशघाती एक स्थानीय है और पुरुष वेद का भी अनुभाग इसी प्रकार का है, परंतु वह चूंकि अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा गया है।
ये पुरुष वेद की बात
पीछे
ये पुरुष वेद की बात है ना, ये पुरुष वेद का भी अनुभाग इसी प्रकार का है, परंतु वह तो ये पुरुष वेद की बात है कि
अंतर्मूर्त पीछे ने
पहले बात
पूर्व में
हमने ही निकाला अंत
वह। अगर वह कहते हैं, देखो वह यानी पुरुष वेद कहेंगे, ऊपर क्या लिखा है कि अंतमुत्तम हेठा ओदरीय नीचे उतर कर बद्धो,
यानी
सुनो वह ने पुरुष वेद अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा है, अतः वह अनंत गुणाहीन है। कौन? वीर्यांतराय अनंत गुणाहीन है। हमने नहीं निकाला था, पहले निकाल कर उसको निकाल दिया था। देखो पुरुष वेद अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा है, इसलिए वीर्यांतर अनंत गुणा हीन है। वह के लिए यह लिखो और ब्रैकेट में वीर्यांतराय अनंत गुणा हीन लिखो, क्योंकि हाँ रखो, क्योंकि मूल में है ना, किंतु अंतोमुत्तम हिट्ठा उदरीय बद्धो तेन अनंत गुण हीनो जादो। पहले अंतर्मूल पीछे कौन बंधा है, पुरुष वेद, परंतु वहां है ना, चूंकि अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा गया है, क्योंकि ये यह वह वहां मूल में नहीं है। प्राकृत पढ़ो, देखो प्राकृत में पढ़ते 129 के नीचे, पूरी सवेदो अनंत गुण उसके नीचे, बिरियंतर आयुष अनुभागो देश गांधी एगट ठानियो, पूरी सवेद सभी अनुभागो एरी सोचे, वह दोनों का एक समान है, बराबर है ना। किंतु अंतोमोत्तम हेठा ओदरीय बद्धो तेना अनंत गुणो हीनो जादन, यानी कौन पहले उत्तर को बंधा है, तो पुरुष वेद। समझ में आई बात, अब 130 नंबर का सूत्र। हस्सम अनंत गुणम, उससे हास्य अनंत गुणा है। हाँ नंबरिंग किया क्या, हाँ सूत्र का नंबर 12 था और ये 18 हो गया, कारण की हास्य अनंत गुण है, कारण की यहाँ अपूर्व करण के अंतिम समय संबंधी सर्वघाती द्विस्थानीय जघन्य अनुभाग बंध का ग्रहण किया गया है। यहाँ पर वो सर्वघाती देशघाती भले दोनों बंधेंगे, परंतु यहाँ जो अंतिम क्या कौन होगा, वो जो मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे, वो सर्वघाती रूप से है, क्योंकि ये प्रकृति भले देशघाती है परंतु उसमें सर्वघाती देशघाती सभी प्रकृतियां, और उसका देशघातीकरण तो बाद में हो जाता है, यहाँ तो कोई बात है ही नहीं उसमें, हास्यरति में तो होती नहीं है। अब आगे रदि अनंत गुणा, उससे रति अनंत गुणी है, कारण कि वह हास्य पूर्वक होती है। ऐसे ये युगल है, हमेशा साथ में बनते हैं, साथ में विच्छित्ति होती है, परंतु प्रकृति का विशेष है। हाँ दुगुंचा अनंत गुणा, उससे जुगुप्सा अनंत गुणी है, यद्यपि रति और जुगुप्सा इन दोनों प्रकृतियों का अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही जघन्य बंध हो जाता है। हास्य रति भय जुगुप्सा की बंध विच्छित्ति है ना, यहाँ पर सबका जघन्य बंध यहीं पर है, तो भी रति की अपेक्षा जुगुप्सा अनंत गुणी है, क्योंकि प्रकृति विशेष का आश्रय करके संसार अवस्था में सर्वत्र इसी प्रकार की स्थिति है। तो इसमें से शुभ कौन सी है और अशुभ कौन सी है नितिन भाई, रति शुभ है कि जुगुप्सा शुभ है, दोनों शुभ है, दोनों ही शुभ है, घाते कर्म सभी अप्रशस्त ही है, और ये मोहनीय है दोनों ही है ना। अभी उसमें तरतमता है, अशुभ अशुभ में या शुभ उसमें जो है तो सारी अशुभ, तो कहते हैं प्रशस्त अप्रशस्त और अति अप्रशस्त, ऐसे उसमें हम तरतमता लगा सकते हैं। कहते भयम अनंत गुणम, उससे भय अनंत गुणा है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। सोगो अनंत गुण, उससे शोक अनंत गुणा है, क्योंकि शोक का अंतिम बंध कहाँ होगा, छठे में, छठे में बंध विच्छित्ति है, तो ये और भय कहाँ तक, आठवें के अंतिम समय तक बनता है, वहां विशुद्धि ज्यादा है, उससे शोक अनंत गुण है। कारण यह कि अपूर्व करण की विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले प्रमत्त संयत के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया है। जघन्य से जघन्य की कंपैरिजन चल रही है हमारी, समझ में आई ना भाई? ये बंध विच्युति क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि वहां उसकी उसका हाँ जघन्य बंध वहां पर पाया जाएगा। अरधि अनंत गुणा, उससे अरति अनंत गुणी है, नंबरिंग करते जाना। सत्रह तेईस, क्योंकि ऐसा स्वभाव है अरति अनंत गुणी, ऐसा स्वभाव है। पेज नंबर 69 पर आ गए हम। इत्थि वेदो अनंत गुणो, उससे स्त्री वेद अनंत गुणा है। कारण यह कि यहाँ प्रमत्त संयत की विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणी हीन विशुद्धि युक्त सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधे गए स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का ग्रहण किया गया है। ये सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कहाँ पर हो गए? सातवें के सन्मुख पुरुष वेद बांधेगा, प्रायोगिक लब्धि के जो स्थान है ना, 36 बंधापसरण, उसमें कौन से नंबर का है? पहले तो नपुसक वेद जाता है और फिर वो तो निज गोत्र वगैरह जाता है, लास्ट नहीं उसके कुछ 30 नंबर पे, 30 ही बोला क्या आपने? हाँ 30 नंबर पर है शायद। हाँ पहले नपुसक वेद वगैरह जाले जाते हैं ना, बाद में नीच गोत्र जाता है फिर। देखो स्त्री वेद अनंत गुणे हो गए ना, क्या क्या कौन सा 38 36 ही बंधा अपसरण है, 34वां स्थान है। वो मनुष्य गति की अपेक्षा बात चौतीसवा कौन सा होगा? 34 फिर 35 36 35 और 36 में तो छठे गुण स्थान की बंधे विच्छुति है। 35 में अभी बंधे विच्छुति निकाल के देखनी पड़ेगी,
ये बंधापसरण के स्थान देखना पड़ेगा।
कल बताना। कंफ्यूजन क्या है? हमने हाँ याद किए थे ना, पंचलब्धि में भी है वो। हमने याद भी किए थे सब कंटिन्यूस में। हाँ उससे नपुंसक वेद अनंत गुणा है, कारण कि संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध ऊपर बढ़ा हाँ सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का ग्रहण किया गया है। उसके भी वो बंध विच्छित्ति वाला ही स्थान देखना है। क्योंकि देखो प्रायोगिक लब्धि में भी उन्होंने उसके अभिमुख वाले जीव की बात की यहाँ पर। हाँ अभी केवल नानावर्णीयम केवल दंशनावर्णीयम च दो भी तुल्यानी अनंत गुणानी। हाँ श्रीवेद में ऐसा नहीं लिखा है, अभी इन जनरल कथन किया उन्होंने। विशुद्ध मिच्छा इच्छिना और मिच्छा इच्छिना सब विशुद्ध है ना संयमा ही मोहेना, उसमें भी वही बात लगा सकते हैं। संयम के अभिमुख वाले की जो प्रायोगिक लब्धि से उनकी जो विशुद्धि कुछ विशेष अधिक होगी। हाँ 138 नंबर का केवल नानावर्णियम केवल दर्शनावर्णियम च दो भी तुल्यानी अनंत गुणानी, उससे केवल ज्ञानावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय ये दोनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणी है। ये बंती कहाँ है? दसवें में। और नपुंसक वेद बनता कहाँ है? पहले गुणस्थान में। तो अभी इसको अनंत गुणा क्यों कहा?
ये सर्वगाती
है। हाँ, सर्वगाती है। यद्यपि इन दोनों ही प्रकृतियों का अंतर्मूर्त काल तक अनंत गुणी हानि होकर सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग बंद होता है, तो भी सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के द्वारा बांधे गए नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग बंद की अपेक्षा वह अनंत गुणा है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। ख्याल में केवल प्रकृति बनती है ना, उसका अनुभाग की भी तरतमता कहाँ क्या होती है उसकी चर्चा है यहाँ पर। 27 हो गए ना। पहला अनंत गुणा, उससे प्रचला अनंत गुणी है। अभी प्रचला की बंधे विच्छित्ति कहाँ पर है? निद्रा प्रचला आठवें के पहले भाग में है। ये केवल ज्ञानावरण कहाँ बन रहा था? दसवें के अंत में, और यहाँ आठवें के पहले भाग में बंधे विच्छित्ति होती है। हाँ, तो उनसे प्रचला अनंत गुणी है, क्योंकि वह अपने काल के 7 भागों में से प्रथम भाग में वर्तमान और अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्ध वाले अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीव के द्वारा बांधी जाती। क्या कहना चाहते? कंपैरिजन किसमें है? केवल ज्ञानावरणीय। वो कहाँ बनता है? सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में। उस विशुद्धि से आठवें गुणस्थान के पहले भाग में, उसके अंत में विशुद्धि, विशुद्धि भी हीन है, तो वहां पर अनुभाग ज्यादा बांधा जाता है। अब आते हैं 7। क्या क्या?
प्रचला का बंध होगा वो चतुस्थानिक होगा।
प्रचला का बंध चतुस्थानिक क्यों? चतुस्थानिक कहने की क्या जरूरत है? वहां पर जो कुछ अभी वहां स्थानों की तो चर्चा इतनी नहीं होगी, चतुस्थानिक इतना तो है ही नहीं, क्योंकि अपूर्व का नहीं होगा, विशुद्धि है ना इतनी, क्योंकि श्री मुनियों को भी कितना चतुस्थानिक होगा कि नहीं होगा ये सवाल है। देखो ये अभी हम आते हैं पेज नंबर 70। कितनी प्रकृतियां हुई? 28 हुई ना। हाँ, अब कहते हैं निद्दा, वो निद्धा हुआ है, निद्दा करो, इन्हें डबल द चाहिए, निद्दा अनंत गुणा। उससे निद्रा अनंत गुणी है। यद्यपि इसका जघन्य बंध वहीं पर होता है, क्योंकि निद्रा और प्रचला दोनों का एक साथ विच्छित्ति होती है ना, तो भी प्रकृति विशेष के कारण वह प्रचला से अनंत गुणी है। हमने जब उत्कृष्ट का देखा था तो निद्रा को पहला लिया, फिर बाद में अनंत गुणी हीन में लिया था प्रचला को। अभी प्रचला से पहले लिया तो निद्रा को अनंत गुणा कहेंगे। पचक खाना वर्णीय मानो अनंत गुणा, उससे प्रत्याख्यानावरणी मान अनंत गुणा है, क्योंकि अपूर्व कर प्रत्याख्याना की बात चल रही है ना यहाँ पर। देखो संज्वलन में लोभ सबसे कम लिया बंध में, क्योंकि वो तो अश्वकरण के बाद उसका जो बंध का जो अनुभाग का जो अलग अलग अल्प वो तो अलग हो जाता है। पहले संसार अवस्था में कैसा था? मान का कम, उससे ज्यादा विशेष अधिक क्रोध, उससे विशेष अधिक माया, उससे विशेष अधिक लोभ। हम ये जघन्य की अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहले कम वाले को कहेंगे। परंतु हमेशा हम हाँ प्रत्याख्यान को बाद में लेते ना, उत्कृष्ट की बात है, तो इसलिए वो अनंत गुणा मिलेंगे। तो उससे प्रत्याख्यानावरणीय मान अनंत गुणा है, ये नंबर 30 डालो, क्योंकि अपूर्वकरण क्षपक की विशुद्धि से, क्योंकि निद्रा की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई थी? अपूर्वकरण शपक के आठवें के पहले भाग के अंत में। अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले तथा सर्व विशुद्ध संहिता संयत जीव के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया। ब्रह्मा आप बताएंगे ये कौन से जीव को होगा? प्रत्याख्यान निवरण मान जो है उसका जघन्य बंध, यानी प्रत्याख्यान निवरण चारों का जघन्य बंध किस जीव के होगा? पांचवे गुणस्थान वाले के नेचुरली। पर पांचवे गुणस्थान में भी मैक्सिमम विशुद्धि किसके होगी? सातवें के सन्मुख जीव। यहाँ लिया क्या लिया के सर्व विशुद्ध संयता संयत, यानी संयम के अभिमुख वाला संयता संयत लेना। जीव के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया है। अब आगे कहे थे 142 नंबर, क्रोधो विशेष आयो, उससे प्रत्याख्यान वर्णीय क्रोध विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। माया विशेष आया, उससे प्रत्याख्यान वर्णीय माया विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। 32 पर आ गए ना, अब 33। लोभो विशेष आयो, उससे प्रत्याख्यानावरणीय लोभ विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। अपच्चाख्यानावरणीय मानो अनंत गुण। अभी प्रत्याख्यानावरण चार को लिया विशेष अधिक में, फिर अभी अप्रत्याख्यानावरण, उससे अप्रत्याख्यानावरणीय मान अनंत गुणा है, क्योंकि संहिता संयत की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले सर्व विशुद्ध असंयत सम्य दृष्टि जीव के द्वारा, ये चौथे वाला अति विशुद्धि वाला लेना, बांधे गए जगन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया गया है। सर्व विशुद्धि वहीं पर लेना कि शायिक सम्यक तो में करने आते सातवें के सन्मुख वाला ही लेना पड़ेगा ना। कोधो विशेष आयो, यहाँ सूत्र 145 लिखा है प्राकृत में, उसको 146 करो। ब्रह्मा पुरानी पुस्तकों में प्राकृत में 145 डबल हुआ है ना, लास्ट में कोधो विशेष आयु को 146 करना। तो कहते उससे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेष अधिक है, 140 नंबर का हो गया सूत्र। और हाँ 35 हो गए प्रकृतियां, 71 पृष्ठ पर आना। अभी माया विशेष आया, उससे अप्रत्याख्यानावरणीय माया विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। वो सब में यही बात बता रहे हैं, प्रकृति की विशेषता। अब कहेंगे लोभो विशेष आयो, इससे उससे अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। ये प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान अठमे सब आ गए। अभी निद्दा निद्दा निद्धा हुआ है, निद्दा करो। निद्दा निद्दा अनंत गुणा, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणी है। नंबर 38 करना उसको, क्योंकि वह असंयत सम्य दृष्टि की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधी जाती है। निद्रा निद्रा की बंध विच्छित्ति कहाँ है? स्थान गुरुदीन दूसरे में है, फिर भी ये जो है ना सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जो सम्यक के सन्मुख वाला जो है, वहां जो उसकी जो बंधापसरण हुआ है वहां पर उसकी ज्यादा से ज्यादा उसके वहां बंध होगा उसका।
पहले से तो उसके जाता है उसका जो बंधापसरण का स्थान,
बंधापसरण नहीं है, बंधापसरण में आती है।
हाँ, ये बंधापसरण
ध्रुवबंधी प्रकृति है, ध्रुवबंधी प्रकृति है। मैं क्या कहती हूँ, ध्रुवबंधी प्रकृतियों का बंधापसरण नहीं होता है, वो बंध विच्छित्ति हो जाती है। दूसरे गुणस्थान में भले बंध विच्छित्ति हो गई, परंतु यहाँ उसका विशुद्धि ज्यादा होने से अनुभाग कम बन जाए, ये इतना ले लो, बंदा प्रसरण में मत डालो उसको, वो सातवें के सन्मुख वाला भी बांधेगा। हाँ, उसी के लेना पड़े। सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि संयम के सन्मुख वाला, क्योंकि बंधापसरण तो होते ही नहीं है ना उसके। अब कहते हैं ज्ञान वृद्धि की बात है कि प्रचला प्रचला की, पहला पहला अनंत गुणा, उससे प्रचला प्रचला अनंत गुणी है। यद्यपि इन दोनों ही प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग बंध का एक ही स्वामी है, जो हमने सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, तो भी प्रकृति विशेष होने से प्रचला प्रचला निद्रा निद्रा की अपेक्षा अनंत गुणी है। यही बात स्थान वृद्धि में लगाएंगे। थीन गिद्धि अनंत गुणा, उससे स्थान वृद्धि अनंत गुणी है, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। 40 तक आ गए। अनंतानुबंधी मानो अनंत गुण, उससे अनंतानुबंधी मान अनंत गुणा है, क्योंकि संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधे गए जगन्य अनुभाग बंध का यहाँ ग्रहण किया। ये सारी ही संयम के सन्मुख वाले ही लेना है, क्योंकि ये देखो भले दूसरे गुण स्थान में बंध रहे हैं, परंतु वहां तो सम्यक्त्व से छूटकर दूसरे में आया है, और मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जीव है तो उसकी विशुद्धि कम है, और ये अभी संयम के अभिमुख है, इसकी विशुद्धि ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर उसका अनुभाग बंध जगन्य होगा, ये कहना चाहते हैं। कौन सा देखो, मैंने क्या कहा, अनंतानुबंधी कैसी प्रकृति है, ध्रुवबंधी, कब तक बनती है, अपने बंध विच्छित्ति तक, यानी वो पहले और दूसरे दोनों गुणस्थानों में बनती है, परंतु पहले और दूसरे गुणस्थानों में किसकी अपेक्षा करनी, विशुद्धि की अपेक्षा लगाना है, तो विशुद्धि किसके ज्यादा होगी, पहले से जो सातवें के सन्मुख होने वाला जीव है उसकी विशुद्धि मैक्सिमम है, दूसरे की विशुद्धि कैसी है, कम है, दूसरा जीव कैसा आया है, ऊपर से गिर कर आया है, दूसरा गुणस्थान गिरने वाले को होता है, इसलिए दूसरे गुणस्थान की बात ही नहीं है। हम कहेंगे कि पहले दूसरे गुणस्थानों में दूसरा गुणस्थान ऊपर है ना उसके, ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ भले वो सारी जो निद्रा निद्रा है, स्नान बुद्धि है, अनंतानुबंधी है, वो पहले दूसरे दोनों ही गुणस्थानों में बनती है, पर उसका विशुद्धि कब है, मिथ्या दृष्टि को ज्यादा है, कब, संयम के सन्मुख वाले के, तो वो सब में लगा लेना, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्नान गुदरी सब में, तो वहां उसका जघन्य अनुभाग बंद होता है। फिर भी प्रकृति विशेष होने से, क्योंकि दोनों ही आप कहेंगे दोनों ही सर्वघाती है, फिर भी इसका प्रकृति विशेष से उसका अनुभाग ज्यादा है। अभी आना पेज नंबर 72 पर, अभी प्रकृति का नंबरिंग 42 किया ना, 42। क्रोधो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी क्रोध विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। माया विशेषाया, उससे अनंतानुबंधी माया विशेष अधिक है, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है, क्योंकि सभी बन रहे ना, क्रोध मान माया लोभ, भले किसी एक का उदय है परंतु बन सब रहे। लोभो विशेषायो, इससे अनंतानुबंधी लोभ विशेष अधिक है। 44 तक आए, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। मिच्छतम अनंत गुणम, उससे मिथ्यात्व अनंत गुणा है। देखो आपको याद होगा जब हमने मोहनीय में जो अल्पबहुत्व देखा था, उत्कृष्ट का हो, सबसे टॉप पर मिथ्यात्व था, फिर उससे नीचे अनंतानुबंधी था, फिर संज्वलन था, फिर प्रत्याख्यान, ये उत्कृष्ट की बात है। अब जगन्य में सबसे नीचे संज्वलन लिया है, क्योंकि उसका ऊपर तक बंद है ना, इसलिए। अब देखो मिथ्यात्व अनंत गुणा है, ये 45 नंबर तक आ गए हमें। क्योंकि अभी मिथ्यात्व का भी वही कारण है, संयम के अभिमुख हुए, वो अपने काल के अंतिम समय में स्थित, यानी अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है। सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया गया। शंकाकार पूछते हैं, जबकि इन दोनों ही प्रकृतियों का एक ही समिथ्या दृष्टि स्वामी है, अभी अनंतानुबंधी की बात क्या है? मिथ्या तो अनंतानुबंधी स्थान बुद्धि सब सबके लिए तो वही तो है ना। हाँ, एक ही जीव स्वामी है, तब अनंतानुबंधी लोभ की अपेक्षा मिथ्यात्व का अनंत गुणा होना कैसे उचित है? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रकृति विशेष होने से उसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि वो हमने वो पहले उत्कृष्ट में भी देखा था अल्पभूतो, जघन्य में भी अल्पभूतो देख रहे हैं। ओरालिय शरीरम अनंत गुणम, उससे औदारिक शरीर अनंत गुणा है, क्योंकि यह प्रशस्त प्रकृति है इसलिए इसका संक्लेश से जघन्य बंध होता है। यद्यपि यह प्रकृति मिथ्या दृष्टि संबंधी उत्कृष्ट संक्लेश से बांधी गई है, तो भी वह मिथ्यात्व की अपेक्षा अनंत गुणी है। क्योंकि संक्लेश से शुभ प्रकृतियों के महान अनुभाग का क्षय नहीं होता। हाँ, वही देव ही लेना पड़ेगा ना। मिथ्यात्व की उदार इसका जघन्य अनुभाग की बात है ना। देव में अगर लेते हैं तो उसका अनुभव ज्यादा होगा, प्रशस्त प्रकृति अगर देव में बांधते ऐसा लेंगे तो वो हमने उत्कृष्ट अनुभाग में उसको लिया था, देव बांधते हैं चौथे गुण स्थान में, उत्कृष्ट अनुभाग के प्रकरण में लिया था। अब यहाँ जघन्य अनुभाग की बात है। क्या हुआ?
विश्वास
है ना। तीस नंबर का है और नपुसक वेद का 27 होगा शायद।
नपुसक वेद 27,
क्योंकि ऐसे कुछ नंबरिंग याद थे अपने।
ये मेरे पास प्रिंटेड
है। हम 69 पेज पर देखते थे ना। सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के जीव द्वारा बांधे गए श्रीवेद के जघन्य अनुभाग का, यानी वो बंधापसरण प्रायोग्य लब्धि में बंधापसरण का नंबर 30वां स्थान, बंधापसरण का 30वां स्थान। और नपुसक वेद में
27,
बंधापसरण का 27वां। हाँ, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। अभी हम मिथ्यात्व की बात देख रहे थे, नहीं औदारिक शरीर की बात देख रहे थे। फिर से देखो, एक इतना पढ़ लेते बाकी कल देखेंगे। यह प्रशस्त प्रकृति, औदारिक शरीर कौन सी प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसका संक्लेश से जघन्य बंध होता है। वैसे तो बनती रहेगी ना, औदारिक का तो बंध होता है, अभी एक इंद्रियों के वगैरह तो वो तो बंध होता ही रहेगा उसको। ये पंचेंद्रिय भी बांधते रहेंगे, देवनार की भी बांधते रहेंगे, उत्कृष्ट संकलेश में भी इसको बांधना तो है ही नहीं, उनको दूसरी कोई शरीर बनता ही नहीं उनके, तो संकलेश से जघन्य बंध होता है। यद्यपि यह प्रकृति मिथ्या दृष्टि संबंधी उत्कृष्ट संकलेश से बांधी गई है, तो भी वह मिथ्यात्व की अपेक्षा अनंत गुणी है। मिथ्यात्व अप्रशस्त प्रकृति थी और उसका जघन्य बंध वो संयम के अभिमुख वाले ने किया था। औदारिक शरीर का जो प्रशस्त प्रकृति है वो संकलेश से इसका जघन्य बंध होगा, फिर भी मिथ्यात्व की अपेक्षा अनंत गुणी है, क्योंकि संकलेश से शुभ प्रकृतियों के महान अनुभाग का क्षय नहीं होता। क्योंकि ये तो प्रकृति कोई ना कोई शरीर तो बंधना ही बंधना है ना। अब यहाँ रुकते हम, 73 पेज पर आ गए, कल यहाँ से शुरू करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे।